الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد پچھلے دو بیانات میں ایک حدیث کی تشریح شروع کی تھی جو نامکمل رہ گئی ہے. اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما یہ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے تورات جو نازل ہوئی تھی اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفات مذکور تھیں, کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھلی کتابوں تورات اور انجیل وغیرہ بھی انہوں نے پڑھی ہوئی تھی, اس لیے بعض صحابہ کرام نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے جو کتابیں پڑھی ہیں اور قرآن کریم میں یہ ذکر ہے کہ پچھلی کتابوں میں تورات اور انجیل میں بھی رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارتیں دی گئی ہیں اور آپ کی علامتیں بیان کی گئی ہیں, تو کیا صفات آپ نے دیکھیں کہ تورات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکور ہیں؟ اس کے جواب میں انہوں نے اس تورات کی کچھ عبارت پڑھ کر سنائی تھی. اس میں سب سے پہلے تو یہ فرمایا گیا تھا کہ انت عبدی و رسولی, اللہ جل جلالہ رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم میرے بندے ہو اور میرے رسول ہو. سمیتک المتوکل, میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے, یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے والا. ان دو جملوں کی تشریح میں نے پچھلے دو مجلسوں میں کی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی فہم عطا فرمائے, اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر آگے رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مزید اوصاف بیان فرمائے. سب سے پہلے تو فرمایا لیس بفظ ولا غلیظ, یعنی رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو سخت گو ہیں اور نہ سخت دل ہیں. سخت گو کا معنی یہ کہ لوگوں کے ساتھ سخت کلامی کرنے والے, لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے, اور غلیظ کے معنی سخت دل, یعنی دل کے مزاج کے ہی سخت ہیں ہوں اور دل ہی سخت ہو, تو آپ کا دل بھی سخت نہیں اور زبان پر جو گفتگو آتی ہے وہ بھی سخت نہیں ہوتی, نرم گفتگو کرنے والے ہیں. یہ ایک بنیادی صفت بیان فرمائی رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور درحقیقت خود قرآن کریم میں بھی اللہ جل جلالہ نے نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ فبما رحمت من اللہ لنت لہ, یہ اللہ کی رحمت تھی جس کی وجہ سے آپ تمام لوگوں کے لیے نرم ہیں, نرم مزاج ہیں. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك, اگر آپ سخت کلامی کرنے والے اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نرم بنایا. یہ نرمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی بنیادی صفت تھی جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر فرمایا اور اس کی تعریف بھی فرمائی, اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت بھی ہے کہ آدمی اپنے برتاؤ میں, دوسروں کے ساتھ برتاؤ میں نرمی کا معاملہ کرے, سخت نہ ہو. यहां तक के दुश्मनों के लिए, दुश्मनों से भी जब बातचीत करने की नौबत आए तो सख्ती ना करें, नरमी का बर्ताव करें। कुरान करीम ने भी जब हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास भेजा, तो फिरौन के पास भेजते हुए जो नसीहत फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने, वो ये फरमाया कि कूला लहू कौलल लयिन, उनसे नरमी के साथ बात करना, फिरौन से बात करना नरमी के साथ। अब आप अंदाजा लगाइए कि फिरौन जो है वो जो खुदाई का दावेदार है और इतना सरकश है कि वो किसी दूसरे की बात मानने के लिए भी तैयार नहीं होता, और जिसके बारे में अल्लाह ताला के इल्म में है कि वो कभी ईमान लाएगा नहीं, उसके बावजूद हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को ये ताकीद फरमाई कि कूला लहू कौलन लयिना, उससे जाकर नरमी से बात करना, और साथ ही ये भी फरमाया कि लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा, इस उम्मीद पर तुम नरमी से बात करना कि शायद वो नसीहत कबूल कर ले, शायद उसके दिल में खुदा का खौफ पैदा हो जाए। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला के इल्म अज़ली में यह बात थी कि वो ईमान लाने वाला नहीं है, नसीहत कबूल करने वाला नहीं है, खुदा के खौफ से बिल्कुल आरी है, उसके बावजूद हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को ये फरमाया कि तुम्हारे दिल में ये उम्मीद होनी चाहिए कि जब किसी से बात करने जाओ, तबलीग की बात हो, दावत की बात हो, तो तुम्हारे दिल में उम्मीद ये होनी चाहिए कि वो शायद मेरी बात मान ले, लिहाजा नरमी ही का काम करना, फिरौन के मुकाबले में भी नरमी। हमारे हजरत वाले दमाजे कदसल्लाहु ताला सर्रहू फरमाया करते थे कि आज तुम हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम से बड़े मुस्लिह नहीं हो सकते और तुम्हारा मुकाबिल फिरौन से बड़ा गुमराह नहीं हो सकता। जब वहां उनको ये नसीहत की जा रही है कि नरम बात करना, तो हम तुम किस शुमार किदार में हैं। लिहाजा नरमी ये एक अजीम सुन्नत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बल्कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम कि आदमी जब बात करे तो नरम बात करे। हदीस में आता है कि यहूदी तो हमेशा से शरारतें करते रहते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी बड़ी तरह तरह की शरारतें करते थे, तो एक शरारत उनकी ये थी कि मुसलमान जब किसी को से मिलते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमत, अस्सलामु अलैकुम कहते हैं। अब वो यहूदी जो थे वो जब किसी मुसलमान से मिलते हैं या यहाँ तक के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, लाम बीच में से खा जाते थे अस्सलामु अलैकुम, और साम के माना सलाम के माना तो है सलामती, अस्सलामु अलैकुम के माना है तुम्हारे ऊपर अल्लाह की सलामती और अल्लाह ताला सलाम तुम्हें सालिम रखे, सलामती के साथ रखे, ये दुआ है बहुत बड़ी। और साम के माना अरबी में होते हैं मौत और लानत, मौत, तो उसके माना अस्सलामु अलैकुम के माना होंगे कि तुम्हारे ऊपर मौत आ जाए, तुम्हारे ये बद्दुआ बन जाती है और लानत के अल्फाज बन जाते हैं अस्सलामु अलैकुम। तो वो इस तरह कहते थे कि लाम बीच में से जैसे आदमी जल्दी में कह देता है, तो इस तरह कहते थे अस्सलामु अलैकुम के, ताकि जो लोग समझे कि वो सलाम किया है, हकीकत में वो बद्दुआ दे रहे होते थे। ये शरारत थी उनकी, और यहाँ से ये भी समझ में आता है कि भाई जब हम लोग जो सलाम करते हैं तो ज़रा इत्मीनान से किया करो, सही तरीके से, सही तरीके से अल्फाज निकाला करो, क्योंकि अस्सलामु अलैकुम के बजाय अगर अस्सलामु अलैकुम कह दिया वो उल्टी बद्दुआ बन जाती है। ये यहूदियों का काम, मुसलमान का काम यह है कि जब सलाम करे तो अस्सलामु अलैकुम पूरा वाज़े तरीके से सलाम कहे। गरज वो इस तरीके से शरारत किया करते थे। तो एक मरतबा एक यहूदी आया और उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्सलामु अलैकुम कहा, तो حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک شاید پردے کے احکام نہیں آئے تھے، تو اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں، انہوں نے جواب میں کہہ دیا کہ علیکم السام واللعنہ، الٹا اس کا جواب دیا کہ یہ سام یعنی موت کی جو بدعا دے رہے ہو تم، تمہارے اوپر ہو یہ موت اور لعنت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ضرورت تھی تمہیں یہ جواب دینے کی؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ نے سنا نہیں، اس نے انہوں نے السلام علیکم نہیں کہا بلکہ السلام علیکم کہا جو بد دعا دی، تو شرارت کر رہے ہیں تو اس لیے میں نے اس کا جواب دیا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیوں اپنی زبان خراب کرو، تم نے سنا نہیں، میں نے ان سے صرف ایک بات کہی علیکم، علیکم یعنی علیکم السلام بھی نہیں، سام بھی نہیں، بس کہہ دیا علیکم کہ جو کچھ تم ہمارے لیے مانگ رہے ہو وہ تمہارے اوپر ہو۔ تو اور پھر فرمایا کہ تم نے کبھی مجھے دیکھا کہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی سخت کلمہ بولا ہو؟ اب یہ علیکم السلام واللعنہ یہ تو سخت کلمہ ہے، تو کبھی تم نے مجھے دیکھا کہ میں نے کوئی سخت کلامی کی ہو کسی کے ساتھ؟ اور پھر ایک اصول بیان فرما دیا، زرنی اصول، سنہرا اصول، فرما دیا کہ ما دخل الرفق فی شئین الا زانہ وما نزع عن شئین الا شانہ۔ نرمی ایسی چیز ہے کہ جب کسی چیز میں داخل ہو جائے گی تو اس کو زینت بخشے گی، جس کام میں بھی نرمی کا برتاؤ کرو گے وہ اچھا ہوگا، زینت والا ہوگا۔ وما نزع عن شئین الا شانہ، اور نرمی کسی چیز سے بھی اگر نکال دو گے، نرمی ختم کر دو گے، تو جس چیز سے بھی نرمی نکالی گئی ہے اس میں عیب پیدا ہو جائے۔ سختی بری بات ہے یا عیب ہے، اور نرمی ایک اچھا وصف ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر نازل ہوتی ہے نرمی کے ساتھ، اس میں زینت پیدا ہوتی ہے۔ لہذا سخت کلامی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے بہت دور تھی یہ بات کہ وہ کسی کے ساتھ سخت کلامی کریں، سختی انداز میں پیش آئیں۔ یہاں تک کہ جو ایسے مواقع آتے تھے جہاں پر عام آدمی ہوتے تو ڈانٹنے لگتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عام طور سے کسی کو ڈانٹتے نہیں تھے، اگر کچھ سمجھانا ہوتا تو نرمی سے، محبت سے، پیار سے سمجھاتے، لیکن ڈانٹنے کا انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عربی دیہاتی وہ مسجد میں آیا، اور مسجد میں آ کر اس نے پیشاب کر دیا۔ اب وہ دیہاتی بیچارہ اللہ آدمی، اس کو یعنی شہری تمدن اور تہذیب سے دور تھا، اس کو کوئی اس میں خرابی نہیں معلوم ہوئی، پیشاب آیا کر لیا مسجد میں۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو اس کو کچھ ڈانٹا وانٹنا شروع کر دیا، یہ کیا غضب کیا تم نے اس پر ڈال دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تو ذری منہ، کہ نہیں اب تو اس نے کر لیا جو کچھ کرنا تھا، مسجد تو ہو گئی خراب، لیکن اب تم اس کے ایسا نہ کرو کہ ڈانٹنے وانٹنے کی وجہ سے اس کا پیشاب بند ہو جائے، لہذا تم اس کو ڈانٹو نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ انما بعثتم میسرین، تمہیں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، مشکلات پیدا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ اب یہ بیچارہ نادانی میں ایک کام کر گیا، غفلت میں، کوئی مقصود توہین نہیں تھی مسجد کی، لیکن نادانی میں کر گیا، تو اس واسطے اس کو ڈانٹنے کی بات نہیں ہے، اب کرنے دو، اس کے بعد اس کے اوپر پانی بہا دینا مسجد کو پاک کرنے کے لیے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے بعد میں، لیکن فرمایا کہ ڈانٹو نہیں۔ آپ اندازہ کرو کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی حرکت کرے تو لوگ کتنا اس کے اوپر لعنت ملامت کریں گے، لیکن نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی، لیس بفظ ولا غلیظ، वो आपकी शान ये नहीं थी। और यही वश था जिसने बड़े बड़ों के दिल मोह लिए और जिसके नतीजे में अल्लाह तबारक वताला ने लोगों को इस्लाम लाने की तौफीक अदा फरमाई। ये वश सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, नरमी का, हर एक के साथ नर्म खुई का, नरमी इस कदर के किसी हदीस में आता है कि कोई अगर देहाती भी किसी वक्त आकर आपका हाथ पकड़ के बात करना शुरू कर देता तो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक उसकी बात सुनते रहते जब तक कि वो खुद न चला जाए। अब आप इतने सारे उम्मत के मसाइल आपके सर पर हैं, जिहाद आप फरमा रहे हैं, तालीम आप दे रहे हैं, तबलीग आप फरमा रहे हैं, सारे मुल्क का इंतजाम आप फरमा रहे हैं, उसमें एक देहाती पकड़ के खड़ा हो जाता है, लंबी बात शुरू कर देता है, तो साहबा फरमाते हैं कि आप उसका हाथ झटक कर कभी नहीं गए जब तक के वो खुद ही न चला जाए, आप उसकी बात पूरी तरीके से सुनते रहे। यहां तक कि एक मरतबा हदीस में आता है कि आप नमाज पढ़ाने खड़े हो गए और उस वक्त में एक साहब आ गए, वो बातचीत कोई जरूरी बात करने शुरू कर दी, तो आपने उसकी भी बात पूरी सुन और पूरी सुनकर फिर नमाज पढ़ाई। तो लोगों के साथ शफकत मोहब्बत, अल्लाह ताला की मखलूक है, ये जो कोई भी है अल्लाह की मखलूक है। मेरे शेख हज़रत आरिफ़ क़द्र सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि अगर किसी को अल्लाह जल्ल जलालुहु से मोहब्बत है तो उसे अल्लाह की मखलूक से भी मोहब्बत होनी जरूरी है। ये अल्लाह की मखलूक है, लिहाजा इसके साथ सख्ती नहीं चाहिए, इसके साथ नरमी का बर्ताव करना है, इसके साथ मोहब्बत का, शफ़क़त का बर्ताव करना है। ये वस्फ अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से इस वस्फ का कोई हिस्सा हमें अता फरमा दे तो हमारे बेशुमार मसाइल जो है वह हल हो जाए। जो बात नरमी से हासिल हो सकती है उसके लिए सख्ती करने के नतीजे में झगड़े पैदा होते हैं, उसके नतीजे में अदावतें पैदा होती हैं, दुश्मनियां खड़ी होती हैं, तनाजात खड़े हो जाते हैं और दिल खराब होते हैं। लेकिन अगर हर आदमी ये सोचे कि मैं नबी करीम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए मैं नरमी का मामला करूंगा और नरमी का मामला करता रहे तो ये बहुत सारे झगड़े, फितने, बहुत से तनाजात, मुकदमाबाजियां ये खत्म हो जाए। तो फरमाया एक वक्त ये बयान फरमाया कि ला लैसा बिफज़्लिन वला ग़लीज़, आप सख्त कलामी करने वाले भी नहीं थे और सख्त मिजाज भी नहीं थे। वला सखाबिन फिल अफवाह, और न बाजारों में शोर मचाने वाले। और आज भी जो बाइबल के अंदर अल्फाज मौजूद हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो उसमें अल्फाज बिल्कुल इसी यही है कि बाजारों में उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी। ये अल्फाज आज भी बाइबल में मौजूद है, लिखे हुए हैं, बाजारों में उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी। यानी बाजार के अंदर जब आदमी जाता है कुछ, या तो खरीदने के लिए जाता है या बेचने के लिए जाता है, तो खरीदारी में भी और बेचने में भी बाद औकात लोगों की आदत यह होती है कि दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं। और मसलन खरीदार है वो पीछे पड़ जाता है बेचने वाले के जो कम करो, और बेचने वाला पीछे पड़ जाता है कि लेके जाओ इसी कीमत में लेके जाओ जो मैं कहता हूं। तो दोनों एक दूसरे के साथ खींचतान में बाद औकात उनकी आवाजें भी बुलंद हो जाती हैं। तो ये तो फरमाया गया कि बाजारों में उनकी आवाज सुनाई नहीं देगी, उसका एक मतलब यह है कि खरीदारी में या बेचने में वो किसी दूसरे पर ऐसा इसरार नहीं करते जिसकी वजह से आवाज बुलंद करने की जज्बा बताए। और ये भी एक वक्फ है, बड़ा अजीम वक्फ है जिसका हदीस में जिसकी बड़ी फजीलत वारिद हुई है। और हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह ताला उस बंदे को बहुत पसंद फरमाते हैं जो समहन इज़ा बाअ समहन इज़ा इश्तरा समहन इज़ा इक्तदा, जो अगर कोई सामान बेच रहा है तो बेचते वक्त भी नरमी का मामला करे और खरीद रहा है तो खरीदारी के वक्त भी नरमी का मामला करे और अपना कोई हक मांग रहा है तो हक मांगने में भी नरमी का मामला करे। ऐसे शख्स को अल्लाह तबारक व तआला बहुत पसंद फरमाते हैं। यानी बेच रहा है तो यानी कि बस कसम खा के बैठ गया कि मैं किसी के लिए भी कोई रियायत नहीं करूंगा, बल्कि अगर कहीं मौका आया किसी के लिए रियायत करनी की जरूरत हुई तो रियायत भी कर दी बेचने वाला। और खरीदने वाला नरमी ये ना हो कि वो पैसे पैसे पर जान दे रहा है और शर्त के ऊपर मुसल्लत हो गया बेचने वाले के कि मैं तो कम करो कम करो जरूर कम करो, और इतना मुसल्लत हो गया कि आखिर में बेचारे ने सोचा कि इसको बला को टालो किसी तरह, लेकिन पैसे कम हो जाए लेकिन ये बला तो टले। ऐसा करना तो हराम ही है बिल्कुल। तो जो आदमी नरम हो बेचने के वक्त में भी और खरीदारी के वक्त में भी, उसको अल्लाह ताला बहुत पसंद फरमाते हैं। तो बाजारों में आवाज सुनाई नहीं देगी, यानी एक तो ये कि खरीदारी और बेचने में नरमी का मामला करने वाले होंगे, सख्ती का मामला नहीं करने वाले। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में तशरीफ ले जाते थे बाजार में भी, बाज़ औक़ात किसी खरीदारी के लिए भी तशरीफ ले जाते थे और बाज़ औक़ात अपने साहबे किराम के हालात को देखने के लिए भी तशरीफ ले जाते थे, लेकिन इस तरह के वक़ार के साथ और नरमी के साथ बाजार में आवाज़ सुनाई नहीं देती रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसको ख़ास तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने आपके इस वस्फ को बयान फरमाया। तो मालूम हुआ कि जब आदमी अपनी किसी ज़रूरत के तहत बाजार में जाए तो उसमें एहतमाम करे इस बात का कि शोर वोर ना मचाए, किसी मौके पर शोर मचाने की नौबत ना आए। फिर फरमाया वलायत फाउ सैयअत बिस्सैया, ये अजीम वस्फ बयान फरमाया कि आपकी एक अजीम अलामत यह है कि बुराई का दिफा बुराई से नहीं करते। यानी किसी दूसरे ने आपके साथ कोई बुरा मामला किया तो उसके जवाब में आप उसके साथ बुरा मामला नहीं करते, वलाकिन याफू व यस्फा, बल्कि माफ फरमा देते थे और दरगुजर फरमा देते। अब ये ऐसी अजीम सुन्नत है, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से हमें सुन्नत की इत्तबा की तौफीक अता फरमाए। ऐसी अजीम सुन्नत है, हम लोगों ने सुन्नतें चंद जवाहिर की बना रखी हैं कि बस वो जवाहिर तो सुन्नत है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला के फजल व करम जिसको की तौफीक हो जाए तो वो भी बड़ी नेमत है। ये ज़ाहिरी सुन्नतें कि भाई हमने दाढ़ी मसलन सुन्नत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अपने लिबास पोशाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तबा करने की कोशिश भी अल्हम्दुलिल्लाह कर लेते हैं, और ये सुन्नत है कि मस्जिद में दाखिल हो तो दाएँ पाएँ से पाँव से दाखिल हो बाँव से बाहर निकले वगैरह वगैरह। ये ज़ाहिरी सुन्नतें को तो सुन्नत समझा भी जाता है और कुछ उसके अमल की तौफीक भी हो जाती है, उस पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करनी चाहिए, जिस सुन्नत पर भी अमल की तौफीक हो जाए नेमत है। लेकिन ये अजीम सुन्नतें जो आपके बर्ताव से ताल्लुक़ है, दूसरों के साथ बर्ताव, दूसरों के साथ मामलात, मुआशरत, अखलाक, ये भी अजीम सुन्नतें हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इनका एहतमाम करना भी ज़रूरी। देखो जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास खास सिफात बयान फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला इस तौरात में, तो उसमें इस चीज़ को बड़ी नुमाया हैसियत से बयान फरमाया कि आप नर्म हैं और सख्त दिल नहीं हैं और बुराई का बदला बुराई से नहीं देते, दरगुजर से काम लेते हैं, माफ़ कर देने के से माफी से काम लेते हैं, इसका खास तौर पर जिक्र फरमाया। ये भी हो जिक्र आ सकता था कि भाई रातों को सजदे में पड़े रहते हैं और पांव पर वरम आ जाता है और इबादत के लिए खड़े रहते हैं, ये भी फरमाया जा सकता था, ये भी फरमाया जा सकता था कि बहुत रोजा रखने वाले हैं, ये भी फरमाया जा सकता था कि आपके आपके इबादत के अंदर कोई दूसरा थानी नहीं है आपका। लेकिन अल्लाह तबारक वताला ने खास तौर पर जिस बात का जिक्र फरमाया वो ये कि बुराई का बदला बुराई से नहीं देते, लायक पाओ सैया बिस सैया, और ये ऐसा वस्फ है जिसके कुरान करीम ने कई आयतों में इसका इसकी फजीलत बयान फरमाई। फरमाया इदफा बिल्लती ही आसन सैया, कोई तुम्हारे साथ बुराई करे तो उसका बदला उसका दफा दिफा अच्छे तरीके से करो, अच्छाई से बदला दो, बुराई का बदला अच्छाई से दो। फ़ाइज़ल लज़ी बैनका व बैनहू अदावतुन कान्नहू वलीयुन हमीम, अगर ऐसा करोगे कि बुराई का बदला तुम अच्छाई से दोगे तो जिसके साथ तुम्हारी सख्त अदावत थी कट्टर दुश्मनी थी वो भी तुम्हारे लिए ऐसा हो जाएगा जैसे तुम्हारा बहुत गहरा दोस्त है। अगर तुमने बुराई का बदला अच्छाई से दिया तो तुम्हारा जो जानी दुश्मन है वो भी तुम्हारे लिए एक गहरा दोस्त जैसा बन जाएगा। लेकिन साथ ही फरमाया मा युलक्काहा इल्ला लज़ीना सबरू, ये सिफत किसी को हासिल नहीं होती मगर उन लोगों को जो सब्र से काम लेते। वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, और ये सिफत अता नहीं होती मगर ऐसे शख्स को जो बड़ा नसीबों वाला हो, बड़ी किस्मत वाला हो, उसको ये सिफत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आता होती है जबकि उसने सब्र से काम लिया। अब ये सुन्नत ऐसी है कि तकरीबन हमारे यहां मतरूक हो, बुराई का बदला अच्छाई से देना सुन्नत, और ये अजीम सुन्नत वो है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामात में से शुमार की गई। आपकी अलामत यह है, आपके सिफात में से एक बहुत बड़ी सिफत यह है जिससे पहचाना जाए कि यह खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कि बुराई का बदला अच्छाई से। मुसलमानों को मिसालें मालूम होंगी कि ताइफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सुलूक किया काफिरों ने, पत्थर बरसाए, लड़के पीछे लगा दिए और वो पत्थर बरसाते रहे यहां तक के आपके कदम मुबारक खून से लहूलुहान हो गए। आप मक्का मुकर्रमा के लोग जो हैं वो मान नहीं रहे थे तो आपने ये सोचकर के दूसरा बड़ा शहर ताइफ है वहां पर शायद कोई अल्लाह का बंदा मेरी बात मान ले, दावत मेरी कबूल कर ले, वहां तशरीफ ले गए थे हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा के साथ रज़ी अल्लाह तआला। लेकिन वहां के लोगों ने यह हरकत की तो जो उम्मीद लेकर गए थे वो पूरी ना हुई और बदला पत्थरों से दिया गया, गालियों से दिया गया, लड़के पीछे लगा दिए गए, कदम मुबारक लहू लुहान हो गए। उस वक्त में फरिश्ता पहाड़ों का आता है और आकर कहता है कि आप अगर हुक्म दें तो हम इस बस्ती के दो पहाड़ों के दरमियान वाकई इसको दोनों पहाड़ों को मिलाकर इसको खत्म कर दें, नेस्त नाबूद कर दें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मैं ये नहीं चाहता, शायद अल्लाह ताला इन्हीं के सुल्ब से कोई ईमान वाले लोग पैदा कर दे, अपने दीन की खिदमत करने वाले पैदा कर दे। और आज हम लोग जो आप लोग यहाँ पर मुसलमान बैठे हैं ये दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रहमतुल आलमीन का सदका है, क्योंकि वहां जो कबीला आबाद था वो बनू सकीफ का कबीला था और बनू सकीफ का कबीला अगर तबाह कर दिया जाता तो फिर कोई नामो निशानी ना रहता। लेकिन उसी बनू सकीफ को ने बाद में जाकर इस्लाम कबूल किया और उसी के एक फर्द से मोहम्मद इब्न कासिम सकफी जिन्होंने थिंद फतह किया है और उनकी वजह से वहां पर मुसलमान बैठे। तो गरज ऐसी तकलीफें बनाई, उहद के मैदान के अंदर आपके दंदा ने मुबारक शहीद हुआ, कड़ियां जेरा की आपके दशहरे मुबारक में लग गई, खून जारी हो गया, कहा गया कि आप इनके लिए बद्दुआ कर दें, लेकिन आपने फरमाया कि अल्लाह ये मेरे कौम की मगफरत फरमा दे, इनको पता नहीं। अल्लाहुम्मा फिर ले कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। तो बुराई का बदला काहे से दुआए खैर से दिया जा रहा है। और सबसे बड़ा मुजाहरा तो फतेह मक्का के मौके पर जो लोग खून के प्यासे थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने कांटे बिछाए थे आपके रास्ते में, जिन्होंने आपके साथियों के ऊपर मजालिम के पहाड़ तोड़े थे, वो आ रहे हैं और आप फातेह बनकर दाखिल हो रहे हैं मक्का मुकर्रमा के। लेकिन आम ऐलान है कि जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएगा उसे अमन है, जो काबे में दाखिल हो जाएगा उसे अमन है, जो अपना घर का दरवाजा बंद कर लेगा उसे अमन है। और फिर जब सबको जमा करके फरमाया कि बताओ आज तुम्हारे साथ मैं क्या सलूक करूंगा, तो सब लोग कह रहे थे कि जो सलूक भी करें बरहक होगा। लेकिन आपने फरमाया कि मैं सबको रहाई देता हूं, फान तुम इजहबू फान तुम तलाका, जाओ सब आजाद हो, किसी के साथ किसी से कोई बदला नहीं ले जाए। तो लायद पाओ सही आदा बस भी सही है, बुराई का बदला बुराई से कभी सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया, बुराई का बदला हमेशा अच्छाई से दिया। अल्लाह अकबर। हजरत एक हैं जैद इब्ने उसाना या सोना, ये एक बहुत बड़े यहूदी सरमायेदार, यहूदी थे, सरमायेदार थे, बड़े सरमायेदार, और वो खुद अपना वाकया बयान करते कि मैं यहूदी था और जब नबी करीम सरवरत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो मुझे भी ये फिक्र हुई कि तौरात के अंदर खातिमुन नबीजीन सबसे आखिर में पैगंबर आने वाले पैगंबर की बहुत सी अलामतें बयान की गई हैं, तो मैं ये देखूं कि वो अलामतें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर पाई जा रही हैं या नहीं पाई जा रही हैं। तो मैंने कई तरीके से जांचा तो मुझे बहुत सी अलामतें जो तौरात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान हुई थी वो नजर आई हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन एक अलामत ऐसी थी कि जिसका मुझे अभी तक कोई मुजाहरा नहीं हुआ था उसका, यानी वो सामने नहीं आई थी। वो अलामत ये थी कि कोई आदमी उनके साथ जहालत का बर्ताव करेगा तो उसके साथ भी वो हुस्न सुलूक करेंगे, कोई जाहिलाना बर्ताव करेगा तो उसका उसके साथ भी हुस्न सुलूक करेंगे। ये बात भी तौरात में मजकूर थी और अभी तक मुझे इसका तजर्बा नहीं हुआ, तो मैं इस इंतजार में था कि कोई मौका मिले तो मैं उसका तजर्बा करूं। तो एक मरतबा मैं हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया तो वहां मैंने देखा कि एक साहब आए हुए थे किसी कबीले के देहात थे, और उन्होंने आकर हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि या रसूलुल्लाह हमारे देहात में जो लोग हैं उनको हमने दावत दी थी इस्लाम की और वो मुसलमान हो गए थे, हमने उस वक्त इस्लाम की दावत देते हुए उनसे ये कहा था कि अगर तुम इस्लाम ले आओगे तो अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे पर बड़ी बरकतें आएंगी, बड़ी रहमतें आएंगी। तो वो हम मुसलमान हो गए सब। अब कुछ अरसे से वहां पर कहर पड़ा हुआ है, लोग खाने को तरस रहे हैं, पीने को तरस रहे हैं, बदहाली में मुबतला है, फाका कशी में मुबतला है, तो अंदेशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बद्दिल होकर माजल्ला मुर्तद हो जाए, लिहाजा उनकी कुछ इमदाद और इयानत का इंतजाम फरमाइए ताकि उनकी परेशानी दूर हो और ये जो खतरा है कि वो इस्लाम से बदल हो जाएंगे वो भी दूर हो जाएंगे। इत्तेफाक से अब वो एक बस्ती थी, छोटी बस्ती सही लेकिन बस्ती थी, सारे बस्ती वालों के लिए ज्यादा इंतजाम करना काफी माल दरकार था। उस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतना माल था नहीं कि वहां पर भेजते। तो ज़ैद इब्न साना कहते हैं कि मैंने एक पेशकश की रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप अगर वहां भेजना चाहते हैं तो मैं आपको एक भारी मकदार के करीबन 80 मिसकाल सोना मैं आपको देता हूं, लेकिन इस शर्त पर देता हूं कि इतनी मुद्दत के बाद आप मुझे फला आदमी के बाग की इतनी खजूरें मुझे मुहैया करेंगे। अक्सी मिसकाल सोना हमें देता हूं बशर्ते कि इतनी मुद्दत के बाद फला बाग की इतनी खजूरें आप मुझे दें। ये बै सलम कहलाती है, यानी उसमें होता यह है कि किसी जैसे काश्तकार लोग होते हैं तो उनको जरूरत होती है पैसों की, तो वो अभी तक उनका फल आया नहीं होता उससे पहले ही वो बेच देते हैं कि तुम ये पैसे हमें दे दो और हम तुम्हें इतनी मुद्दत के बाद खजूरें फराहम करेंगे। ये बै सलम कहलाती है। तो उस शख्स ने यह कहा कि इस शर्त के साथ मैं 80 मिसकाल देता हूं कि फला आदमी के बाग की इतनी खजूरें आप मुझे मुहैया कर दें। अब शरी मसला यह है कि अगर कोई शख्स ये बै सलम करे तो ये तो कह सकता है कि 80 मिसकाल या मिसकाल सोना लेकर इतनी खजूरें फला फला सिपत की मैं दूंगा, लेकिन खास किसी बाग को मुतय्यन करके कि इस बाग की खजूरें दूंगा ये शरण जायज नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई मैं खजूरें तो मुहैया करने को तैयार हूं इतनी मुद्दत के बाद, लेकिन जो तुम कह रहे हो फला शख्स के बाग की खजूरें ये नहीं, बल्कि मुतलक खजूरें इतनी मैं मुहैया कर दूंगा लेकिन तुम मुझे उसके ऊपर दे। तो ज़ैद इब्न साना कहते हैं कि मैंने मंजूर कर लिया, मैंने कहा ठीक है ये 80 मिसकाल सोना मैं देता हूं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारा सोना जमा करके, 80 मिसकाल बहुत बड़ी बड़ी रकम बनती है, वो जमा करके और उस आदमी को दे दिया कि भाई जाकर तुम अपनी बस्ती में जो लोग बेचारे परेशान हाल हैं फाका कृषि कर रहे हैं उनके ऊपर खर्च कर दो सब। वो ले गए, चुनाचे अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर वो खर्च हुआ और वो जो उनके लोगों की मुश्किलात थी वो दूर हो गई। अब जब वो वक्त आया जिसमें खजूरें देना तय हुआ था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस किसी बाग के पास पहुंचे जहां से खजूरें देनी थी। आपके साथ हजरत सिद्दीक अकबर भी थे, हजरत उमर भी थे, हजरत अली भी शायद थे रजी अल्लाह तआला अन्हु अजमाईन। जाकर ये देखना चाह रहे थे आपके जाकर वो खजूरें लें और फिर उनको दी जाए। तो वहां ये कहते हैं ज़ैद इब्न साना में पहुंच गया और मैंने जाकर बड़े सख्त लहजे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मोहम्मद तुम जल्दी से मेरा जो हक है वो अदा करो, खजूरें दो मुझे। और मैं जानता हूं कि तुम अब्दुल मुत्तलिब के खानदान के लोग हो, ये अब्दुल मुत्तलिब के खानदान के लोग बड़े बेवफा होते हैं और ये गद्दारी करते हैं और जो वादा करते हैं उसको पूरा नहीं करते, जल्दी से दो मुझे। बहुत सख्त लहजे में मैंने जाकर हुजूर से बात। अब वहां फारूक आजम भी थे, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो कहां सुनने वाले थे। उन्होंने कहा कि देख ज़ैद इब्न साना तू ये अगर तू ये इस तरह की बात कर रहा है तो अगर मुझे खौफ ना होता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो इसी वक्त तेरी गर्दन उड़ा देता। ये आवाज ये बात सुनी आपने, उसकी भी सुनी और हजरत उमर की भी सुनी। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या उमर काश कि तुमने जो ये जुमला कहा कि मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा देता इसके बजाय तुम हक बात कहते। हक बात ये कहते, मुझे नसीहत करते कि आप इसका हक दे दो और इसको नसीहत करते कि मुतालबा करने में सख्ती ना करो, उसके साथ उसको ये नसीहत करते हैं कि मुतालबा करने में सख्ती से काम न लो, नरमी से मुतालबा करो, और मुझसे कहते कि आप इसका हक अदा करते। ये अब आप कहते तो तुम्हारी बर हक होती, लेकिन ये कहना कि तुमने कह दिया कि मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा देता, ये हक बात नहीं की। तो बजाय उसको डांटने के जिसने इस बेहुदा तरीके से आकर मुतालबा किया और ऐसी झूठी बात कही कि अब्दुल मुत्तलिब के बेटे बेटे गद्दार होते हैं, वफादार नहीं होते, बेवफा होते हैं, ऐसी झूठी बात कही जिसने, उसको कुछ नहीं कहा। लेकिन हजरत फारूक आजम से कहा कि तुमने ये जो सख्त लहजा अख्तियार किया और सख्त कलामी की, ये ना करते, इसके बजाय तुम्हें चाहिए था कि उसको नसीहत, मुझे नसीहत करते कि तो आप इसका हक पूरा अदा कर दो, और उससे नसीहत करते कि अच्छे तरीके से मुतालबा करो। फिर कहा कि जाओ, हज़रत उमर से कहा कि अब तुम खुद जाओ और जो इनका हक है, जितनी खजूरें हैं वो इसको दे दो, और तुमने जो इसके साथ सख्त कलामी की है उसके बदले में 12 सा खजूर और दे देना, 12 सा खजूर और देना। अब हज़रत उमर उसको लेके चले और जाकर वहां बाग में वो खजूरें पैमाने से नाप कर देनी शुरू की, जो उसका हक था वो पूरा दे दिया। उसके बाद 12 सा मजीद दिए। तो ज़ैद इब्न साना कहते मैंने पूछा कि ये 12 सा कहते हैं, कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उनकी हुक्म की तामील में दे रहा हूं, और आपने फरमाया था कि क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ सख्ती की बात की थी, इस वास्ते उसके बदले में ये 12 सा तुम्हें देने का हुक्म दिया रसूल करीम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो उस वक्त ज़ैद इब्न साना कहते हैं कि उस वक्त मुझे एक अलामत बाकी रह गई थी कि जो जहालत का बर्ताव करेगा उसके साथ, वो उसके साथ हुस्न सुलूक फरमाएंगे, वो अलामत जो अब तक मेरे सामने नहीं आई थी मेरे सामने आ गई। और फिर मैं अगले दिन पहुंचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, जाकर इस्लाम कबूल किया, कहा कि अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, और उसके बाद फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर मामले में शरीक भी रहे और बहुत से गज़वात में हिस्सा लिया, यहाँ तक कि फिर हजरत उमर के दौर में, हजरत उमर अजान के ज़माने में भी गज़वात में हिस्सा लिया। और शायद यरमूक में किसी गज़्वे में, अब मुझे सही याद नहीं रहा, लेकिन किसी उसमें शहीद हुए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वर्ज़ा। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक शख्स आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से न सिर्फ के सख्त कलामी कर रहा है, बल्कि ये तोहमत लगा रहा है कि तुम्हारा खानदान जो है बेवफा है, तुम्हारा खानदान वो अपने वादों को पूरा करने वाला नहीं। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब हज़रत उमर को सख्त अंदाज में देने से भी रोका, उसके बदले में और ज्यादा दिया। ऐसे कई हदीस में वाकयात आते हैं जो एक और मौके पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हदीस में आता है कि आपके जिम्मे किसी के ऊंट थे, वाजिब थे, उसने आकर सख्त लहजे में बात करनी शुरू की, साहबे किराम ने उसको डांटने की अंदाज इख्तियार किया, तो आपने फरमाया दऊहु फइन लिसाहिबिल हक मकाला, उनको कहने दो, जो हक वाला होता है उसको कुछ कहने का हक होता है, जिसको अपना हक लेना है वो अगर थोड़ा बहुत जरा दुरुस्ती से भी बात कर ले तो उसको बर्दाश्त करना चाहिए। तो ये इदफा बिल्लती ही अहसन सैया, बुराई का बदला अच्छाई से दो, तो फैज़ अल्लज़ी बैनका वबैनहु अदावतुन कअन्नहु वलीयुन हमीम, वो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा जैसे तुम्हारा गहरा दोस्त हो। ये सुन्नत भाई, अमल करने वाली सुन्नत है, बड़ी अजीम सुन्नत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आज हमारे माशरे में मतरूक हो रही है। जो हमारे यहाँ जो काम भी किसी के साथ हो रहा है, अपने अजीज करीब के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपने अहबाब के साथ, वो बदले की बुनियाद पर हो रहा है। इसने ये किया था तो मैं ये, अगर इसने अच्छाई की तो मैं भी अच्छाई करने की कोशिश करूं, और इसने बुराई की तो उसका जवाब मैं भी बुराई करूं, उससे ज्यादा बुराई करूं। इसने हमारे मासले को فساد کی آمادگاہ بنا دی. ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت حضرت اللہ تعالیٰ سے رضی اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی اور ظاہرے کے قرآن و سنت کی بنیاد پر فرمائی کہ جب کسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، کوئی اچھا سلوک کرو، تو اس بات کی توقع نہ رکھو کہ وہ مجھے میرا شکریہ ادا کرے گا یا مجھے بدلہ دے گا، بلکہ اللہ کے لیے کرو. جو بھی میں کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی رضا جوئی کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا ثواب عطا فرمائے، اس لیے نہیں کہ بدلہ. نہ نُرِيدُ مِنكُم جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، ہمیں نہ تم سے شکریہ چاہیے نہ ہم سے تم سے بدلہ چاہیے، ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں. لہذا اگر وہ فرض کرو اس کے بعد میں اس کا بدلہ اچھا نہ دے تو پھر کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی کہ ہم نے تو اللہ کے لیے کیا. یہ بات اگر پیدا ہو جائے تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک پاک صاف معاشرہ بن جائے، لڑائیوں سے پاک، جھگڑوں سے پاک. لیکن ہو یا رہا ہے کہ بدلہ ہے ہر چیز میں، کیونکہ وہ ہماری عیادت کے لیے آیا تھا لہذا ہم عیادت کے لیے جائیں گے، وہ تو ہماری عیادت کے لیے آیا نہیں تھا لہذا ہم کیوں جائیں. اس نے تو ہمیں دعوت میں بلایا نہیں تھا تو ہم کیوں اس کو بلائیں دعوت میں. اس نے تو ہمارے شادی بیاہ کے اندر کوئی تحفہ دیا نہیں تھا، ہم کیوں دیں اس کے. اس نے تو اس بچوں میرے بچے کی پیدائش کے اوپر کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا، میں کیوں کروں. تو یہ ایک ذہنیت ہے جس نے کہ سارے ہمارے اچھے کاموں پر پانی ڈالا ہوا ہے اور اچھے کاموں کو بھی گناہ بنا دیا ہے. لیکن اگر آدمی یہ سوچے کہ وہ آیا ہو یا نہ آیا ہو، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے میں تو عیادت کے لیے جاؤں گا، وہ میری عیادت کے لیے آیا ہو یا نہ آیا ہو، لیکن میں جاؤں گا. کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ ایک مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعوت دعا کرتے رہتے ہیں. میں تو اس لیے جا رہا ہوں، وہ آئے یا نہ آئے. اور اسی کو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ دے، لیکن صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ دوسرا تو قطع رحمی کر رہا ہے لیکن یہ اس کے جواب میں صلہ رحمی کا معاملہ کر رہا ہے. تو یہ ہے سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا يدفع السیئة بالسیئة ولكن يعفو ويصفح، معاف کر دے، درگزر کر لے. اگر کوئی شخص کسی کو نے کوئی اگر زیادتی کی ہے تو اس کا بدلہ دینے کا لینے کا حق تو دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تمہیں تم چاہو تو اتنا ہی بدلہ لے لو. لیکن سوال یہ ہے کہ بدلہ لے کر تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ اگر معاف کر دو گے تو معاف کرنے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضیلت رکھی ہے، اس کے جو عظیم ثواب رکھا ہے، وہ اتنی بڑی دولت ہے کہ بدلہ لے کر تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، معاف کر کے اتنی بڑا بڑا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں. تو اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بیان فرمائی گئی کہ یعفو ویصفح، معاف کر دیتے، درگزر فرما لیتے تھے. پھر آگے فرمایا کہ لا یقبضہ اللہ حتی یقیم بہ الملۃ العوجا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس نہیں بلائیں گے جب تک کہ ٹیڑھی امت کو سیدھا نہ کر. یہ ٹیڑھی امت ایسی ٹیڑھی قوم کہ جس نے برائیوں کو اچھائیاں بنا رکھا تھا، برائیوں کو مایہ فخر بنایا ہوا تھا، اس کے ذہنیت کو، اس کی فکر کو، اس کی سوچ کو، اس کے کاموں کو اس طرح بدل دیا کہ انقلاب عظیم برپا ہو گیا. لا یقیم به، لا یقبض اللہ حتی یقیم به الملۃ العوجا ویفتح به اعینا ثم عمیا واذانا ثم وقلوبا غلفا. اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے وہ آنکھیں کھولیں گے جو اندھی ہوئی بھی ہیں، اور وہ کان کھولیں گے جو بہرے ہو گئے ہیں، اور وہ دل کھولیں گے جن پر غلاف چڑھا ہوا ہے، باطل کا غلاف، اس کو کھولنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے. اور اس کے لیے سب سے بڑا راستہ یہ بتایا ہے कि आप चूंकि बुराई का बदला बुराई से देने के बजाय अच्छाई से देंगे तो उसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला इस टेढ़ी उम्मत को हिदायत करते और इनके बंद कान खुल जाएंगे, इनकी अंधी हुई आंखें खुल जाएंगी, इनके दिलों पर जो गुलाब चढ़ा हुआ है वो उतर जाएगा। 23 साल की मुख्तसर मुद्दत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीम कारनामा अजीम इंकलाब बर्पा करके दिखा दिया। तो भाई ये जो सुन्नतें बयान हुई हैं ये महज एक वाकये का और अफसाना अलऔज़ु बिल्लाह नहीं है, ये इसलिए है कि हम अपने दर्द अमल पर गौर करें, गरेबान में मुंह डालें, जहां पर हम नारवा सख्ती कर रहे हैं, जहां हम बदले की खातिर दूसरे के साथ मामला कर रहे हैं, वहां उसको खत्म करके अल्लाह के लिए करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तबा की नियत से करें। फिर देखो युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हमसे मोहब्बत करने लगे। अल्लाह ताला अपने रहमत से अपने फजल व करम से हम सबको उसकी तौफीक अता फरमाए। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أرحم الراحمين أبدأ فضل وكرم أبدأ رحمة أمان تمام ونحفظكم وعافكم. يا الله أمري أعمال وأخلاق في إصلاح فرما. يا الله أبدأ رحمة أمان دلوكم دلوں کی اصلاح فرما دے، یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما دے، یا اللہ اپنی رحمت و اتباع سنت کی توفیق قابل اور راستے عطا فرما، یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر من سعادك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.